नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सभी कृष्ण
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। भगवान अब आत्मज्ञान सुनाना प्रारंभ कर चुके हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनादिपा 12वें श्लोक से भगवान ने कहा कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मैं, तुम और ये सारे योद्धा उपस्थित नहीं थे, और ऐसा कोई भी समय नहीं रहेगा भविष्य काल में भी। और उसके पश्चात अब भगवान देह कैसे परिवर्तनशील है इस जीवन में। 12वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे जीव देह में परिवर्तित होता है, या देह को छोड़कर दूसरे देह में परिवर्तित होकर आता है। और 13वें श्लोक में भगवान ने कहा कि उसी देह में कैसे परिवर्तित होता है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति। और एक धीर व्यक्ति वो मोहित नहीं होता इस परिवर्तन से। आज का श्लोक एक और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि भगवान हमें इस भौतिक संसार में क्या करने के लिए कह रहे हैं। यह श्लोक एक दृष्टिकोण से बहुत विद्वानों को भ्रम में डालने वाला श्लोक भी है। बहुत से विद्वान इस श्लोक की व्याख्या ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि इस श्लोक में मानो भगवान समाधान दे भी रहे हैं और नहीं भी दे रहे हैं। और इस श्लोक से यह भी समझ में आता है कि इस भौतिक संसार का स्वरूप हम कभी बदल नहीं सकते, और स्वयं भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं वो। इसलिए बहुत ध्यान से इस श्लोक को हमें श्रील प्रभुपाद जैसे समझाए हैं उनके पदचिन्हों पर चलते हुए समझना है। तो पिछले 2 श्लोकों की ही व्याख्या आगे करते हुए भगवान अब ये जो 14वां श्लोक है इसे बोल रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यास ताम स्थिति क्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यास ताम स्थिति क्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्या ताम स्थितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शा अर्थात हमारी इंद्रियां और इंद्रियों के विषय भोग वस्तुएं। कौंतेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, वो उसी प्रकार से उपलब्ध होते हैं और छीन ले जाते हैं जिस प्रकार से शीत उष्ण सर्दी गर्मी सुख दुख इनका प्रकटीकरण और अप्रकटीकरण आगम अपाइन, उसी प्रकार से सुख दुख मान हानि मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी शीत उष्ण ये सब कुछ अनित्य। भगवान कहते हैं अनित्य है, हे भारत हे कुंती पुत्र ये अनित्य है। तो मानो फिर अर्जुन पूछे तो फिर एक धीर व्यक्ति को, जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने धीरस्तत्र एक धीर व्यक्ति की व्याख्या की, तो मानो अर्जुन पूछे तो फिर धीर व्यक्ति को करना क्या चाहिए। ताम स्थितिक्षस्व भारत। तो यहां पर मानो जो तीन पहले की पंक्तियां हैं उसमें भगवान ने भौतिक प्रकृति का स्वरूप बताया है ना, द्वंद्व से ये भौतिक प्रकृति जो बनी हुई, द्वंद्वों से। द्वंद्व क्या? सुख और दुख, शीत उष्ण सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान और ये द्वंद्वों से बना हुआ ये भौतिक संसार बनाया किसने है, मानो अर्जुन पूछे। भगवान मैंने ही बनाया। अच्छा तो आपने बनाया है और आप कहते हो कि इस भौतिक संसार में हमें केवल इन्हें सहन करना है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो यदि भगवान बोल रहे हैं सहन करो बस, या हमारी भाषा में क्या बोलते झेलो बस, तो ये थोड़ा भ्रमित कर देता है कि भगवान ऐसे कैसे बोल सकते, कुछ वो नहीं कर सकते क्या। यदि वो कुछ नहीं कर सकते तो फिर भगवान कैसे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है ये समझना कि भगवान जब कहते हैं ताम स्थितिक्षस्व कि तुम मेरी प्रकृति को बदल नहीं सकते, उसे मैं ही बदल सकता हूं। तुम इस प्रकृति से ऊपर उठो, यदि मैं इस प्रकृति को बदल दूंगा तो तुम्हें कौन बदलेगा। तो भ्रमित करने वाला वाक्य क्या है, ताम स्थितिक्षस्व बस सहन करो। तो कोई त्रस्त व्यक्ति है, मानो डॉक्टर के पास जा रहा है और उसको फोड़ा हुआ है दुख, वो फोड़ा दे रहा है पीड़ा हो रही है और डॉक्टर कहे ताम स्थितिक्षस्व, तुम किस लिए हो फिर। तो यहां पर हम हर समय भगवान के समक्ष उस एक दृष्टिकोण से जाते हैं कि भगवान हमारी सारे द्वंद्वों को एकदम ठीक कर देंगे। तो यहां पर भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान जो भगवद गीता का सिद्धांत है, रेवोल्यूशनरी सिद्धांत, रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ भगवद गीता इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड कि मैं तुम्हारे द्वंद्वों को ठीक नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। बहुत आवश्यक है यह समझना कि हम अध्यात्म का पालन हमारी द्वंद्वों को ठीक करने के लिए नहीं करें, हम स्वयं को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। यह इस श्लोक में समझाया जा रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आज के श्लोक के, पिछले श्लोकों से क्या संबंध है आज के श्लोक का, इंद्रियों को मात्रा क्यों कहा गया है, स्पर्शा शब्द का अर्थ, आगमा पाइनो शब्द का अर्थ, सहिष्णुता का महत्व, और अर्जुन के जो दो नाम भगवान पुकारे, कौंतेय और भारत। तो यदि पिछले दो श्लोकों को लें, 12वां श्लोक जिसकी चर्चा हमने की, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनादिपा, और 13वां श्लोक, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यवनम जरा। अब यहां पर ये जो दो श्लोक हैं, इन दो श्लोकों में आप क्या समझते हो कि वो दो श्लोक और आज का श्लोक, इन तीनों श्लोकों में कोई संबंध है, तीनों श्लोकों का कोई संबंध? बारहवें श्लोक में यह समझाया गया है कि जीव किस प्रकार से नित्य है, आत्मा पर प्रभाव डाला गया है 12वें श्लोक पर, और 13वें श्लोक में जो पिछले हफ्ते हमने लिया उसमें देह के ऊपर कि देह वो कैसे परिवर्तनशील है। तो भगवान दोनों को लेकर अर्जुन को समझा रहे हैं कि जीव की नित्यता और देह की अनित्यता। तो ये दोनों श्लोकों को समझने के पश्चात फिर आज का जो श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय, इसमें अब जीव परिवर्तित देह को लेते हुए इस संसार में कैसे जीता है ये भगवान समझा रहे हैं। तो अब इस श्लोक में, आज के श्लोक में भगवान ने एक और चीज कौन सी ऐड कर दी, 12वें श्लोक में जीव की व्याख्या, जीव की नित्यता की व्याख्या, 13वें श्लोक में देह के परिवर्तनशील होने की व्याख्या, और आज के श्लोक में यह संसार, यह संसार में जो देहधारी आत्मा रह रहा है यह संसार का स्वरूप क्या है। तो जीव आत्मा, जीव अर्थात आत्मा, आत्मा देह और यह संसार। तो इससे क्या समझ में आया हमें कि भगवान तीन श्लोकों में, 12वें 13वें और ये 14वें श्लोक में, इन तीनों श्लोकों में बहुत ही सही तरीके से हमारी स्थिति को हमें बता रहे हैं, और इतना ही नहीं ये भी बता रहे हैं कि उस स्थिति में हमें पहले जीव के बारे में जान लेना है कि वो कैसे नित्य है, देह जो परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित देह से व्याकुल न होना, मोहित न होना, और फिर इस संसार में ये जो द्वंद्वों का हम अनुभव करते हैं तो द्वंद्वों को कैसे समझना। अब भगवान धीर पुरुष के लक्षण बता रहे हैं, धीर पुरुष के लक्षण बताते हैं, फिर से हम अब आज का श्लोक और पिछले हफ्ते का श्लोक इसमें यदि लें तो भगवान देहिनोस्मिन यथा देहे, उस श्लोक से भगवान बता रहे हैं कि निषेध के रूप से धीर पुरुष के लक्षण क्या है, और आज के श्लोक से भगवान बता रहे हैं विधि के रूप से धीर पुरुष के लक्षण क्या है। विधि और निषेध समझते हैं आप लोग? डूज एंड डोंट्स निषेध का अर्थ है, जैसे आपने पढ़ा होगा धूम्रपान निषेध है, पढ़ा है निषेध, तो निषेध का अर्थ है डोंट्स, नहीं, नेगेटिविटी है उसमें, और विधि का अर्थ है डूज, करना, उसमें पॉजिटिविटी है। तो ये दोनों श्लोकों में, आज के श्लोक में और पिछले श्लोक में, भगवान धीर पुरुष के लक्षण बता रहे हैं, नेगेटिविटी से और पॉजिटिविटी से। कैसे? हाँ, मोहित न होना, ये पिछले श्लोक से, और आज के श्लोक में सहन करना। तो नहीं, कुछ नहीं करना है और कुछ करना है, है ना? तो हो गया ना पॉजिटिव और नेगेटिव। तो धीर पुरुष वो है जो मोहित नहीं होता और उसके साथ साथ सहन करता है। केवल एक काफी नहीं है, दोनों होना चाहिए। धीर पुरुष यदि किसी को बनना है तो दोनों लक्षण होने चाहिए, भगवान बता रहे हैं। तो ये संबंध अब समझ में आया, ये तीन श्लोकों का बहुत महत्वपूर्ण है, ये नींव है भगवद गीता की, 12वां श्लोक, 13वां श्लोक और आज का 14वां श्लोक, ये नींव है। इसमें जीव, देह और संसार, ये तीनों के विषय में, और धीर पुरुष के दो लक्षण बताए हैं। तो अब अगला प्रश्न है कि इंद्रियों को मात्रा क्यों कहा गया है? ये संस्कृत का शब्द है मात्रा। हमारी इंद्रियां, आंखें, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये हमारी पांच इंद्रियां, ये हमारा पूरा शरीर तो इंद्रियों से ही बना हुआ। तो अब इनको मात्रा क्यों कहा गया? मात्रा का अर्थ क्या होता है सबसे पहले ये पूछा जाए तो? मात्रा का अर्थ क्या होता है? प्रमाण। और थोड़ी सरल भाषा में क्वांटिटी। हाँ सही बात है, क्वांटिटी। हाँ, गाना मात्रा नहीं 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 वो नहीं। हाँ क्वांटिटी, क्वांटिटी यहां पर बताया गया है। तो इंद्रियों को मात्रा इसलिए कहा गया है क्योंकि इंद्रियां हमेशा सुख दुख की मात्रा को नापती रहती हर समय, कि सुख और दुख इसके बीच में कितनी मात्रा है। हर समय ये मन देखो कार्यरत रहता है कि कहां पर सुख मिल रहा है और कहां दुख से मुझे बचना है। तो सुख प्राप्ति, दुख निवृत्ति, और इन दोनों के बीच में मात्रा कितनी है, या सुख की मात्रा कितनी है, दुख की मात्रा कितनी है, इनका जो नाप करती रहती है वो है हमारी इंद्रियां। हर एक हमारी जो एक इंद्रिय है, हमारी आंखें, नाक, कान, स्पर्श इंद्रिय, त्वक इंद्रिय, जिह्वेंद्रिय, ये सब बस उसी मात्रा को नापते रहते हैं। तो इसलिए यहां पर भगवान अर्जुन को इंद्रिय ये शब्द इस्तेमाल करने के बजाय कहते हैं मात्रा। क्यों? क्योंकि अर्जुन क्या कर रहे थे? नाप रहे थे। अर्जुन नाप रहे थे कि इनको मारने से कितना मुझे दुख मिलेगा, इनको नहीं मारने से कितना मुझे सुख मिलेगा। तो ये जो नाप तौल जो अर्जुन का चल रहा था प्रथम अध्याय में, उसे ध्यान में रखते हुए भगवान देखिए इंद्रिय नहीं कह रहे, मात्रा कह रहे हैं। और फिर स्पर्श, स्पर्शा का अर्थ है विषय। हमारे इंद्रियों के लिए ये सारे विषय वस्तु, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। आंखों के लिए रूप, जिह्वा के लिए रस, नाक के लिए गंध, कानों के लिए शब्द और त्वचा के लिए स्पर्श। तो अब ये प्रश्न पूछा जाए कि इंद्रियां पहले बनी या विषय वस्तु पहले बने? हाँ क्या, पहले वस्तु बनी और फिर इंद्रियां? कैसे आप समझाओ, मतलब ये विषय वस्तु ये पहले बने? तो आपके कहने का अर्थ है कि मान लो कोई सुंदर तस्वीर है, तो सुंदर तस्वीर ये विषय वस्तु किसके लिए है? आंखों के लिए, है ना। रूप, सुंदर रूप है वो विषय वस्तु हमारे आंखों के लिए है। तो आपको कहने, आपके कहने का मतलब है आंखों से पहले तस्वीर बनी? और कोई? दोनों साथ में बने। हाँ हाँ अच्छा, देखिए ये जैसे वही प्रश्न हुआ, मुर्गा पे, मुर्गी पहले कि अंडा पहले? जो पहले ऑर्डर करो वो आएगा ना होटल में। तो देखिए गीता के अनुसार भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन। सबसे पहले इच्छा, हम इच्छा करते हैं और इच्छा के बलबूते पर फिर हमें उस प्रकार का शरीर मिलता है। और शरीर क्या है? ये सब इंद्रियों से बना हुआ। तो सर्वप्रथम हमारी इच्छा होती है कि हाँ मुझे एक ऐसा शरीर चाहिए जिसके द्वारा मैं अच्छे से खा सकूं। जैसे भागवत में कहा गया है कि जो बहुत लालायित रहते हैं बहुत सी वस्तुएं खाने के, तो उन्हें ऐसी योनि दी जाती है जिसमें दिन भर खाते रहो कुछ नहीं होगा। हम मनुष्य दिन भर नहीं खा सकते। कई होते हैं जैसे सुअर, दिन भर वो सूंघते रहते हैं क्या, कि ये नहीं कहां कोई कातिल, वो खाली यही सूंघते रहते हैं कहां खाने को क्या मिलेगा। और दिन भर जितना उनको देते जाओ जितना देते, यहां पर ये जो मछलियां हैं ये भी इस प्रकार से, ये मछलियों को जितना आप देते जाओ वो खाती रहेंगी जब तक मरेंगी नहीं। तो इच्छा उस प्रकार से किसी जीव ने की और उस इच्छा के अनुसार प्रकृति ने शरीर दिया। उस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रकृति ने शरीर दिया। और फिर हम देखते हैं कि हां यह बात सही है कि हमारी इंद्रियां और ये विषय वस्तु ये एक साथ इस सृष्टि में मौजूद हर समय रहती है एक साथ, परंतु इनका प्रकटीकरण हम अलग अलग समय पर करते रहते हैं, तो उसका मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन होता रहता है अलग अलग समय पर। इसलिए ये श्लोक थोड़ा टेक्निकल है समझने के लिए, इसमें फिलॉसफी बहुत ज्यादा भगवान ने कूट कूट के भरी है कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं और विषय वस्तु है, ये दोनों नित्य है, परंतु इनका संसर्ग वो अनित्य, उसका मैनिफेस्टेशन होता रहता है और अनमैनिफेस्टेशन होता रहता है। जैसे कि मान लो एक तकिया बनाया किसी ने, अब तकिया बनाया वो कौन सी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, त्वक, त्वक इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए तकिया बनाया गया। तो अब ये जो तकिए का प्रकटीकरण हुआ, ये तकिए का प्रकटीकरण अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि सतयुग में जो तकिया और आज का जो तकिया वो एक बराबर नहीं, सतयुग में भी त्वक इंद्रिय थी और सतयुग में भी लोगों को इस प्रकार की वस्तु का भोग करने की इच्छा थी, परंतु उस समय जो रिसोर्सेस थे, उस समय जो रिसोर्सेस थे और उस समय की जो इच्छा थी, उसके अनुसार एक विषय वस्तु का प्रकटीकरण हुआ, जिसे हम कह सकते हैं कि उस समय का तकिया, परंतु वो उस समय वो उसको तकिया नहीं बोलते होंगे। तो इसलिए हम जैसे कि अब हमें सुनने के लिए, कानों को सुनने के लिए कितने सारे अलग अलग हमने वाद्य इत्यादि सब उसका आविष्कार कर दिया है, तो कानों को कुछ अच्छी ध्वनि सुनने के लिए हमने विषय वस्तु को पैदा किया। किससे पैदा किया है? आठ तत्वों को लेकर, भूमिर आप अनल वायु खम मनो बुद्धिर एवच, इन सब को लेकर हमने अलग अलग मान लीजिए वाद्यों को एकत्रित कर एक कुछ ध्वनि निकाली, और कानों के लिए, कानों को वो ध्वनि अच्छी लगती है। जैसे कि एक बंबई में एक कॉन्टेस्ट हुआ म्यूजिशियंस का, और ये एक ऐसी ऑर्केस्ट्रा पार्टी जिनको फर्स्ट प्राइज मिला म्यूजिक कॉन्टेस्ट में, क्योंकि ये कोई वाद्य इस्तेमाल नहीं किए बजाने के लिए, उसमें वो इस्तेमाल कर रहे थे डब्बे, पेंट के डब्बे और एक सीडी होती, सीडी को बजाने लगे, डब्बों को बजाने लगे, और जो भी मिला, मतलब जिसे आप इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलोगे, चेयर को बजा के उन्होंने एक संगीत उत्पादित किया। तो अब यदि आप पूछोगे तो ये प्रसिद्ध हुए, जैसे आप देखो वो ट्रेन में वो दो लेके ऐसे ऐसे आवाज करते हैं, चिप्पी है ना, हाँ चिपणी, मुझे लगता है वो शायद इंग्लिश में कैटापुल्ट बोलते हैं, कैटापुल्ट, तो उसको बजा के आवाज निकालते हैं। तो यहां पर ये समझ में आ रहा है कि इच्छा परिवर्तित होती रहती है, उसके अनुसार इंद्रियां भी अलग अलग प्रकार से अपना रूप लेती हैं, और इंद्रियां अलग अलग युगों में रूप लेने के वजह से विषय वस्तु भी बदलती रहती है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं और जो इच्छाएं हैं और जो विषय वस्तु हैं, वो देश काल पात्र के अनुसार उसे अनित्य कहा जाएगा। उनका एग्जिस्टेंस नित्य है, परंतु उनका मैनिफेस्टेशंस और अनमैनिफेस्टेशंस अनित्य है। नहीं, कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, नहीं नहीं, इसलिए तो इच्छा के बिना इंद्रियां किसी काम की नहीं। जैसे कि भागवत में नारद मुनि, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है, वही तो मैं बता रहा हूं कि नारद मुनि एक श्लोक कहते हैं श्रीमद् भागवत में, एतद्धि आतुर चित्ता नाम मात्रा स्पर्शे छया मोह। यही दो शब्द यहां पर जो भगवान कहे वही दो शब्द नारद मुनि भी व्यासदेव जी को कहते हैं कि मात्रा अर्थात ये हमारे इंद्रिया, स्पर्श अर्थात विषय वस्तु, और उसके बीच में इच्छा। तो आपके पास यदि विषय वस्तु है और आपके पास इंद्रियां हैं, ये किसी काम के नहीं जब तक बीच में इच्छा नहीं। मेरी आंखें होंगी और सामने सुंदर तस्वीर होगी, परंतु यदि मेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं हो तस्वीर देखने की, तो ये मेरी आंखें उस तस्वीर को नहीं देख पाएंगी। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये दोनों हमारी इंद्रियां और इंद्रियों के लिए विषय वस्तु, ये दोनों नित्य हैं। हमारी इच्छा उसका प्रकटीकरण और अप्रकटीकरण कराती रहती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है इच्छा। यही तो भगवान यहां पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारी ये जो इच्छा है, वो इच्छा के वजह से यहां पर तुम्हारे शारीरिक जो अलग अलग लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हारी इच्छा के वजह से हैं। और इच्छा तुम यदि सही रखोगे तो तुम धर्म का स्थापना कर पाओगे, इच्छा तुम्हारी सही नहीं होगी तो अधर्म की स्थापना होगी। अब भगवान इस श्लोक में कहते हैं आगम अपाइनो। आगम का अर्थ होता है अपियरिंग, अपाइनो का अर्थ होता है डिसअपियरिंग, अर्थात आने वाला और जाने वाला। तो भगवान उदाहरण किसका दिए, इस शब्द को इस्तेमाल करते हुए भगवान ने उदाहरण किसका दिए हैं, सर्दी और गर्मी। जैसे सर्दी अब जा रही है ना, अब मार्च का महीना सर्दी कम हो रही है, सर्दी कम होते होते क्या गर्मी आ रही है। तो भगवान ये जो परिवर्तनशील क्रिया है इस भौतिक संसार की, इसको समझाते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम जो सोच रहे हो कि ये तुम्हारे सगे संबंधी अब यहां पर मौजूद हैं, तुम दोनों मिलकर यहां पर मौजूद नहीं रहोगे कुछ समय पश्चात, और कुछ समय पश्चात फिर से तुम मौजूद होगे। जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि एक इमारत है, एक इमारत बनती कहां से है, पृथ्वी से। पृथ्वी के पदार्थ लेकर इमारत को खड़ा किया जाता है, और वही इमारत को जब तोड़ दिया जाए तो फिर से वो सब पृथ्वी में मिल गया। तो यहां पर भगवान सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, इन दोनों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन ये समझ लो कि जो वस्तु आती है वो जाएगी, और जो वस्तु जाएगी वो फिर से आएगी। जैसे कि बताया जाता है ना कि मुंबई शहर में लोकल ट्रेन, एक लोकल ट्रेन आई है तो जाएगी, और वो गई है तो दूसरी आएगी। ताम स्थिति क्षस्व, इससे भ्रमित मत हो कि एक ट्रेन छूट गई, एक ट्रेन छूट गई तो दूसरी पीछे आ रही। कई बार ऐसे उदाहरण अभी भगवान कुरुक्षेत्र में 5000 वर्ष पूर्व उदाहरण दे रहे थे, तो सर्दी गर्मी का दे रहे थे क्योंकि सर्दी के मौसम में गीता सुनाई ना, दिसंबर के महीने में। तो वहां पर दिसंबर के महीने में वही कुरुक्षेत्र में बहुत ठंड पड़ती, तो इसलिए भगवान वो उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन यही कुरुक्षेत्र है, यहां पर दिसंबर के महीने में आओगे तो ठंड लगेगी, मई के महीने में आओगे तो गर्मी लगेगी। कुरुक्षेत्र बदलेगा नहीं, यहां का मौसम बदल रहा है, कुरुक्षेत्र नहीं बदल रहा। और यदि तुम भी एक धीर पुरुष बनोगे तो तुम भी नहीं बदलोगे, इससे प्रभावित नहीं होगे। तो ये जो शब्द भगवान ने कहा आगम अपाइनो। इसके संदर्भ में श्रीमद् भागवत में ये दो उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण दिया गया है मोमबत्ती की लौ और नदी का पानी। ये दोनों उदाहरण दिए गए हैं समय समय या अर्थात काल का जो चक्र है, काल का जो नियम है उसे समझाते हुए। बहुत सुंदर उदाहरण है 11वें स्कंद में, जिसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जैसे मोमबत्ती की लौ होती है, हम जब इसे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि एक कांस्टेंट लौ जल रही है, परंतु श्रीमद् भागवत कहता है कि वो कांस्टेंट नहीं है। हर एक क्षण हर एक निमिष काल में वो लौ पैदा हो रही है, मर रही है, पैदा हो रही है, मर रही है। एक लौ पैदा होती है, मरती है, दूसरी लौ पैदा होती है, मरती है, परंतु वो इतनी जल्दी हो रहा है कि हमें सामने दिखता है कि एक हमारे सामने फ्लेम है, अनब्रोकन फ्लेम। इट ओनली इज परसीव्ड बाय अवर आईज दैट देयर इज अ अनब्रोकन फ्लेम ऑफ कैंडल, बट इट इज नॉट एक्चुअली अनब्रोकन। इट इज ऑलवेज एट एवरी मोमेंट द फ्लेम इज ब्रोकन एंड क्रिएटेड, ब्रोकन एंड क्रिएटेड, ब्रोकन एंड क्रिएटेड, बिकॉज अवर आईज आर डिफेक्टिव, वी कैन नॉट डिटेक्ट। तो भगवान कहते हैं, दूसरा भी उदाहरण देते हैं कि जैसे कि एक नदी, नदी बहती हुई नदी है, तो बहती हुई नदी में हमें लगता है कि वो जल, आप ये नहीं कह सकते कि ये वाटर मॉलिक्यूल मेरे सामने अभी मैं देख रहा हूं, हाँ? नहीं, आप जब तक देखो तब तक वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो पास हो चुका है, वो जा चुका है और दूसरा आ चुका है। तो हमारी आंखों के सामने कॉन्स्टेंटली वो चेंज हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल हमारे सामने, परंतु हमें समझ में नहीं आता। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि समय उसी प्रकार से काम करता है कि अभी हमें लग रहा है पिछले 5 सालों से तो मैं वैसा का वैसा ही हूं, या पिछले साल से अब तक मैं वैसा का वैसा हूं। नहीं, काल हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे सूक्ष्म देह को और हमारे स्थूल देह को हर क्षण परिवर्तित कर रहा है। इसलिए जैसे घड़ी, घड़ी की ओर भी यदि हम देखें, यह उदाहरण हम भगवान श्री कृष्ण के गुणों के संदर्भ में एक बार दिए थे, परंतु अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं आगम और अपाइन, इसके संदर्भ में यदि उदाहरण लें, यदि पूछा जाए कि अभी ठीक बताओ समय क्या हो रहा है, ठीक समय एग्जैक्टली मतलब आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, जो भी कोई बता पाएगा एग्जैक्ट टाइम, कोई आज तक बता नहीं पाया है। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट टाइम। क्यों, क्यों नहीं बता पाया और क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि आपको बताने में समय लगेगा ना। अभी आप मुझे पूछो क्या समय हुआ तो मुझे बताने में समय लगेगा कि 8:58 और 10 सेकंड। जब तक मैंने ये बताने के लिए इतना टाइम लिया और 4 सेकंड चले गए, तो मुझे 4 सेकंड पहले का टाइम बताना होगा फिर, तो फिर मैं सही समय नहीं बता रहा है ना। अगर मैं 4 सेकंड पहले का समय बता रहा हूं तो मैं सही समय नहीं बता रहा, और अभी का समय बताने के लिए जो मुझे टाइम लगने वाला है तो फिर वो समय आगे चला गया। भगवान श्री कृष्ण के गुण भी ऐसे ही हैं। अभी यदि मैं कहूं कि भगवान इतने सुंदर हैं तो उसी क्षण भगवान की सुंदरता बढ़ गई। तो भगवान की सुंदरता उसी प्रकार से है और इस भौतिक संसार का जो काल चक्र है वो भी उसी प्रकार से चल रहा है, परिवर्तनशील। अब इसमें ये हम समझ रहे हैं कि दो चीजें हैं। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि अनित्य अनित्य है, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान ये सब कुछ अनित्य है, परंतु आध्यात्मिक संसार में भी हर एक वस्तु में परिवर्तन देखा जाता है, परंतु वहां पर उसको अनित्य नहीं कहते। आध्यात्मिक संसार में उसे कहते हैं नव नवायमान। जैसे भगवान मान लो कि ये कहा गया है भगवान 16 वर्ष के गोलोक वृंदावन में ऐसे ही प्रतीत होते हैं, तब इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस हो गया बस 16 साल के उसके बाद कुछ नहीं, नहीं परिवर्तन हो रहा है, परंतु क्या वो परिवर्तन भौतिक संसार के परिवर्तन के समान है अनित्य? नहीं। आध्यात्मिक संसार का जो परिवर्तन है उसे नव नवायमान कहा गया है कि हर क्षण वहां पर वृद्धि हो रही है, और यहां पर हर क्षण जो परिवर्तन हो रहा है हमारे शरीर में और भौतिक प्रकृति में वो दुर्गति के पथ पे हो रहा है और वो प्रगति के पथ पे आध्यात्मिक संसार में। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड द कॉन्स्टेंट चेंज इज progressing towards enjoyment and this material world the constant change is digressing towards misery. This is the difference. इसलिए जो नित्य वस्तु इस संसार में क्या है, परिवर्तनशीलता ये नित्य वस्तु, everything keeps constantly changing is the constant law of this world. There is what is one thing constant, that one thing which is constant in this material world is everything is not constant. Thoda aaj prasad acha lagega. Aapko ye samajh mein aaya? Things being unconstant, non-constant and things being constant. The law of that. तो भगवान इस श्लोक में इस प्रकार से बता रहे हैं। अब आगे कहते हैं कि अर्जुन मानो पूछे कि भगवान आप तो मुझे बहुत बहुत ही गहरा सिद्धांत बता रहे हो, ये कौन नित्य है कौन अनित्य है, ये मात्रा स्पर्शा, फिर मैं करूं क्या? भगवान ने ताम स्थितिक्षस्व भारत, हे भारत सहन करो, इसे सहन करो। तो जब दुख, भगवान यहां पर दोनों वस्तुओं को सहन करने के बोल रहे हैं, किसको सहन करने के लिए? दुख को भी और सुख को भी। कोई सुख को कोई सहन करता है? सुख को तो दुख को सहन करना पड़ता है भाई, सुख तो कोई कहे टॉलरेट हैप्पीनेस, टॉलरेट हैप्पीनेस ये तो ऑपोजिट हो गया ना। ओके, क्योंकि भौतिक संसार में सुख और दुख में कोई अंतर नहीं, सुख और दुख में भौतिक संसार में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि अंततः भौतिक संसार का सुख यदि आपको जन्म दिला रहा है तो उसमें दुख छिपा हुआ। तो एक भक्त, एक शुद्ध भक्त दुख को सहन कैसे करते हैं? दो दृष्टिकोण से। सबसे पहला दृष्टिकोण है कि जब उनके जीवन में दुख आते हैं तो वो समझते हैं मेरे पूर्व जन्म का कोई बकाया था जो मुझे अभी उसको चुकता करना है, या फिर भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। तत्तेनुकंपाम सुसिमक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, श्रीमद् भागवत का श्लोक है। तो अब देखिए, एक धीर व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है जब दुख उसके जीवन में आते हैं। तो एक धीर व्यक्ति जब दुख उसके जीवन में आते हैं तो वो सुखी होता है, खुश होता है, और जब सुख उसके जीवन में आते हैं तो वो दुखी होता है। दुखी होता है अर्थात उसमें वो लालायित नहीं हो जाता, उस बह नहीं जाता उस सुख में, क्योंकि जब दुख उसके जीवन में आता है तो उसको क्या समझ में आता है, मेरे पूर्व जन्म का एक दुख अब क्रॉस कैंसिल कर दो, हो गया, उसका परिणाम मुझे अभी मिल रहा है। और यदि सुखी है अर्थात मेरा पिछला कोई एक सुख जो पुण्य मैंने किया तो मेरा एक पिछला पुण्य उसको क्रॉस कर दिया यमराज ने, है ना। अभी दुखी है मतलब पिछला पाप क्रॉस हो गया, अभी सुखी है मतलब पिछला पुण्य क्रॉस हो गया। तो किसमें सुखी हो किसमें दुखी हो, तो भ्रमित कर दिया आपने। तो मेरे सुख में दुख डाल दिया और दुख में सुख डाल दिया, ये दोनों भौतिक धरातल पर है। और भगवान कहते हैं इन दोनों को अर्जुन सहन करो, क्योंकि अर्जुन मैं इस प्रकृति को तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा, तुम प्रकृति में रहते हुए बदलो, इसलिए सहन करो। कई बार हमें लगता है कि हम किसी आध्यात्मिक पथ में जाएंगे तो हमारे दुख की निवृत्ति होगी, द्वंद्वों से हम मुक्त होंगे। यहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आंसर देखो, सहन करो। यदि भगवान स्वयं बोलते हैं कि सहन करो, जो कि सारे समस्याओं के निवारण है, वो ये निवारण दे रहे हैं कि सहन करो, सहिष्णुता सहनशीलता को अपने जीवन में अपनाओ, तो फिर हम किसी को क्या उपदेश दे सकते हैं कि ये करने से तुम्हारे आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होगी, ये करने से तुम्हें आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होगी, नहीं। और सुख जब उसके जीवन में सुख आता है तो एक धीर पुरुष ये नहीं कहता कि मेरे वजह से मुझे ये सुख आ रहा है। वो धीर पुरुष भगवत कृपा उसे जानते हुए उसे भोगता भी है, परंतु भगवत कृपा वो मानते हुए वो सहन करता है। अब अर्जुन के दो नामों की व्याख्या, कौन से दो नाम, कौंतेय और भारत। कौंतेय का अर्थ है कुंती पुत्र, तो भगवान अर्जुन को कुंती पुत्र पुकार रहे हैं यहां पर। तो और ये श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण है अर्जुन को यह समझना कि उनकी माता कुंती देवी ने कौन कौन से दुख और द्वंद्वों का सामना किया, सहन किया, सहनशीलता कुंती देवी की कैसी थी। सर्वप्रथम बताया गया है कुंती देवी ये वसुदेव जी जो भगवान श्री कृष्ण के पिता, इनकी बहन। वसुदेव जी शूरसेन की ये पुत्री, और महाराज शूरसेन ने बचपन में ही इनको महाराज कुंती भोज को सौंप दिया। तो महाराज कुंती भोज ने इनको गोद लिया, उस समय उनका नाम प्रथा था, और फिर जब ये गोद लिए तब इनको नाम मिला कुंती। तो बचपन से अपने माँ बाप के साथ ये नहीं रह सकी, और फिर जब दुर्वास मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि आप किसी भी देवता का आह्वान कर सकते हो, तो उन्होंने सूर्यदेव, जब वो विवाहिता भी नहीं थी तो सूर्यदेव का आह्वान किया, और फिर सूर्यदेव से कर्ण, अचानक कर्ण एक शिशु उत्पन्न हो गया। तो उस समय से लेते हुए माता कुंती के जीवन में जो जो परेशानियां कठिनाइयां आई, यदि हम उसका एक लिस्ट निकालें, उनके पति पांडु वो मारे गए, और फिर माद्री के जो बच्चे वो कुंती को संभालने पड़े, अपने तीन, माद्री के दो और एक विधवा का जीवन उस प्रकार से इन पांचों बच्चों को संभालते हुए फिर आगे मिला क्या? शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र इनके षड्यंत्रों से लाक्षाग्रह में जलाने का षड्यंत्र, फिर बाद में वनवास 12 साल का, 1 साल का अज्ञातवास, ये सब कुछ सहन करते हुए कुंती भगवान श्री कृष्ण से क्या कहती है? विपदा संतो तत्शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि मुझे जीवन में और विपदा दीजिए। तो मानो कोई पूछे, भाई कोई कमी थी क्या? परेशानियों की कोई कमी थी आपके जीवन में कि और मांग रहे हो आप? क्योंकि कुंती देवी ने केवल परेशानियों को सहन नहीं किया मन को मारते हुए, कुंती देवी ने उन परेशानियों में भगवान श्री कृष्ण को देखा। तो वो एक धीर पुरुष का लक्षण है कि वो भगवान की कृपा को कैसे उन परेशानियों में देखे। तो ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें याद, तुम किसके पुत्र हो? ऐसी कुंती माता के तुम पुत्र हो हे कौंतेय, और यहां पर तुम केवल इनको देखने मात्र से इतना भ्रमित हो रहे हो कि तुम क्या करो क्या ना करो, इसको तुम परेशानी मान रहे हो। परेशानी यदि देखनी है तो अपनी माता के जीवन में देखो कितनी परेशानी उनके जीवन में आई। तो इसलिए कौंतेय याद दिला रहे हैं अर्जुन को इस नाम से पुकारते हुए। भारत उनके पिता के साइड से अब भरतवंशी अर्जुन, और इतने सारी कठिनाइयां अलग अलग भरतवंशियों के जीवन में, महाभारत में उसका वर्णन है कि कितनी कठिनाइयां परेशानियां भरतवंशियों को अपने जीवन में भुगतनी पड़ी। तो मदर साइड और फादर साइड दोनों साइड से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम ये मत समझो कि तुम्हारे पहले परेशानियां नहीं थी तुम्हारे परिवार में, और ये मत समझो कि तुम जाने के बाद परेशानियां नहीं रहेंगी। ये परेशानियां पहले भी थी, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगी। तुम्हें इनसे ऊपर उठना है। ताम स्थिति क्षस्व भारत, सहन करते हुए इनसे ऊपर उठो हे कुंती पुत्र अर्जुन। तो अर्जुन के ये जो दो नाम, इस प्रकार से इनकी व्याख्या हुई है। अब भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना है जिसमें वो हमें सिखा रहे हैं कि इस भौतिक संसार में हमारे हाथ में क्या है, क्या हम हासिल कर सकते हैं इस भौतिक संसार में जीते हुए। तो भगवान बुद्ध वो एक गांव में गए, एक सन्यासी का वेश धारण किए हुए प्रचार करते हुए अलग अलग गांव में वो जाते। एक गांव में जब पहुंचे तो वहां पर गांव वालों ने भगवान बुद्ध को कहा कि आप यहां पर ज्यादा दिन मत रहो, क्योंकि एक खूंखार कातिल, एक डकैत है जो बिना वजह मार रहा है लोगों को यहां पर। तो बहुत से हमारे गांव के लोग मारे जा चुके हैं उसके आतंक के वजह से, तो हम नहीं चाहते कि आप जैसे महापुरुष वो उसके विक्टिम बने। तो भगवान बुद्ध वो कहे कि नहीं, तो फिर तो मैं मिलना चाहता हूं, मैं घूम किस ले रहा हूं, मैं कोई स्वयं की शांति के लिए थोड़ी घूम रहा हूं, मैं शांति स्थापित करने के लिए घूम रहा हूं, तब तो मैं इस व्यक्ति से मिलना चाहूंगा। तब ये और डर गए, तो अभी तो ये तो मिलना चाहते, हम तो आप इनको चौकन्ना कर रहे थे कि आप चले जाओ यहां से। तो कैसे भी कर भगवान बुद्ध इस व्यक्ति से, ये जो एक प्रकार का आतंकवादी, इससे मिले और इसे पता लगा कि भगवान बुद्ध स्वयं इच्छा किए, तो इसे बड़ा अचरज हुआ कि भाई सारे लोग मुझसे डर डर के भागते हैं और ये व्यक्ति के अंदर इतना साहस कि मेरे सामने मुझसे मिलने आया है। तो ये व्यक्ति, ये डकैत थोड़ा प्रभावित हो गया भगवान बुद्ध को देखकर। तो भगवान बुद्ध हालांकि साधारणतः एक शांत सन्यासी का ही वो रूप धारण किए घूमते, परंतु इस डकैत के सामने भगवान बुद्ध कहे कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा कातिल मानते हो, आतंकवादी मानते हो, परंतु मेरे सामने यदि मैं तुमको कुछ करने के लिए कहूं तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम नगण्य हो। तो अब इसके इसके अहंकार को ठेस पहुंची, ऐसा कैसे बोल सकता। तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, तुम्हें मैं कुछ करने के लिए कहता हूं, तुम लोगों का कत्ल करते हो ना बिना वजह, लोगों का कत्ल कर देते हो, मार देते हो, कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता, ठीक है तुम वो जो पेड़ है पीछे उसमें से एक पत्ता तोड़ कर लाओ। तो ये डकैत ये हंसने लगा, ये कहा मजाक करते हो, अरे आप कहो आपका सर मैं अलग कर दूं आपके धड़ से, पत्ता तोड़ने के लिए बोलते हो। तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं नहीं ठीक है करके दिखाओ, पत्ता तोड़ के बताओ। तो गया, पत्ता तोड़ लिया, पीछे एक वृक्ष था, वृक्ष का पत्ता तोड़कर अब बताओ अब क्या, तोड़ लिया अब क्या, पूरा वृक्ष तोड़ू वो भी तोड़ सकता हूं मैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं नहीं नहीं, कितना समय लगा तुम्हें वो पत्ते को तोड़ने में? कितना समय क्या, एक सेकंड में तोड़ दिया। भगवान बुद्ध कहते अब जाकर जोड़ो वहीं पे, उसी डाल पर जाके जोड़ के दिखाओ इसे। तो वो सोचने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं जोड़ के बताओ उसे, तुम्हें तोड़ने में एक सेकंड लगा ना, अब जोड़ने में वो पत्ते को वापस वहां जोड़ने में कितना समय लगेगा, या पत्ते को उस डाल पर उगने में कितना समय लगता है। तो भगवान बुद्ध इस घटना से, इस प्रसंग से ये दर्शा रहे थे कि इस भौतिक संसार में कोई भी वस्तु को खत्म करना कितना आसान है, टू डिस्ट्रॉय समथिंग इज सो इजी, बट टू क्रिएट समथिंग इज सो वेरी डिफिकल्ट। तो यहां पर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें इनको मारने के लिए बोल रहा हूं, परंतु ये मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य तुम्हें एक डिस्ट्रक्टिव पर्सन, आतंकवादी या एक आतताई बनाने का नहीं है। माय इंटेंशन इज टू क्रिएट धर्म, टू एस्टैब्लिश धर्म। वो अर्जुन तुम नहीं समझ पा रहे, इसलिए भगवान ये बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम अपने सुख दुख के विषय में सोच रहे हो, तुम ये नहीं सोच रहे कि इस पूरी सृष्टि में जो धर्म और अधर्म ये दोनों द्वंद्वों में जूझ रहे जीव जो हैं, जो कि अधर्म में पड़े हुए जिनको धर्म में लाना है उनके विषय में तुम नहीं सोचे, जिसकी स्थापना मैं तुम्हारे द्वारा कराना चाहता हूं उसके विषय में तुमने कोई चिंता नहीं की। तो भगवान इस श्लोक के द्वारा हम सबको यह समझा रहे हैं कि हमारे जीवन में भी हम अक्सर इसी द्वंद्व में पड़े रहते हैं कि ये मेरा दुख है और ये मेरा सुख है, मैं इतना दुखी हूं। जाओ किसी के भी जीवन में जाकर पूछो कि सबके जीवन में, सबके परिवार में उनका दुख सबसे बड़ा दुख होता है, और यदि उसको उसके सुख के बारे में पूछो तो उसका और उसके परिवार का सुख मानो और किसी का इतना सुख नहीं जितना हमारा सुख है, और किसी का इतना दुख नहीं जितना हमारा दुख है। अरे सब लोग, मेरी जो बहू है ना वैसी कोई नहीं, मेरी जो सास है ना वैसी कोई नहीं, मेरे जो पति, मेरी जो पत्नी, मेरे जो बच्चे, भाई बहन, जो ये लोग ऐसा दुख दे रहे ना, ऐसा आज तक किसी ने कोई, आपको महाभारत खोलो, कुछ भी खोलो, कुछ नहीं हो हमारे साथ। सारे शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, सौ भाई मिला के एक में है। ये कहने का आशय ये है कि हाउ दिस मटीरियल एनर्जी जस्ट कीप्स द फोकस ऑन आई मी एंड माइन, मेरा दुख और मेरा सुख। भगवान कहते हैं भाड़ में गया तुम्हारा दुख, भाड़ में गया तुम्हारा सुख, यहां पे मैं तुम्हें खड़ा किया हूं धर्म को स्थापित करने के लिए। बी फोकस्ड ऑन धर्म, ऑन कृष्णा, नॉट व्हाट आई फील गुड, व्हाट आई फील बैड। इसलिए एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, उसका दृष्टिकोण क्या होता है, नॉट मी, नॉट हिम, नॉट ऑल ऑफ अस, वी केयर अबाउट यू कृष्णा, व्हाट गिव्स प्लेजर टू यू। तो यहां पर इस श्लोक द्वारा भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं। तो अंततः हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य जीवन का दो लक्ष्य बताया गया है। यदि भगवान की प्राप्ति भी कोई व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही, तो कम से कम मनुष्य जीवन का ये दो लक्ष्य, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और आत्यंतिक सुख प्राप्ति। आत्यंतिक का अर्थ क्या होता है, अल्टीमेट, अल्टीमेट डिसिपेटिंग मिजरी और अल्टीमेट एक्वायरिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो यहां पर आत्यंतिक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुख निवृत्ति में और सुख प्राप्ति में तो बहुत सब लोग लगे हुए हैं, परंतु आत्यंतिक ये बहुत आवश्यक है समझना, कि भगवान जब कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे, इन दुखों से निवृत्ति प्राप्त करना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य होना चाहिए। और आत्यंतिक सुख क्या है, आत्मा का भगवत सेवा में, वो है आत्यंतिक सुख। परंतु एक उदाहरण से बताना चाहेंगे कि जीव की दशा एक चूहे के समान, इसका मार्मिक उदाहरण दिया गया है। कैसा दिख रहा है बेचारा अंदर त्रस्त चूहा? तो ये उदाहरण है कि एक वैज्ञानिक, उसने किया क्या कि एक चूहे को पिंजड़े में बंद किया, चूहे को पिंजड़े में बंद कर पिंजड़े के एक कोने में उसने पूड़ी का टुकड़ा रखा चूहे को खाने के लिए, चाहे चूहा उसको आनंद ले, आस्वादन करे पूड़ी का टुकड़ा खाकर, घी में तली हुई पूड़ी, और दूसरी तरफ लाइव करंट का एक तार वहां छोड़ दिया दूसरी तरफ। चूहा वो जाए, वो जब लेफ्ट साइड जा रहा है तो उसे मिल रहा है क्या, वो घी की बनी पूड़ी, राइट साइड जाते तो करंट शॉक लगता है उसे। तब अब उसका पूरा दिन गया केवल यही अपने माइंड में रजिस्ट्रेशन कराने में कि लेफ्ट में जाओगे तो सुख, राइट में जाओगे तो दुख। तो लेफ्ट में सुख प्राप्ति और यहां पर दुख की भी प्राप्ति। तो वो राइट से बच रहा था, दुख निवृत्ति कर रहा था, और लेफ्ट में जा जाके सुख प्राप्ति कर रहा था। तो अब ये हमारे साइंटिस्ट, इसने किया क्या कि बदल दिया, दूसरे दिन बदल दिया कि राइट साइड में पूड़ी, लेफ्ट साइड में करंट, यही काम होता है इनका। इसलिए नोबेल प्राइज मिलता है इनको। अब इसने दूसरे दिन बदल दिया, तो अब ये चूहा भ्रमित हो, कंफ्यूज हो गया कि अबे जहां पर पूड़ी मिल रही थी वहां करंट मिल रहा है, और जहां पर करंट पिछले दिन मिल रहा वहां पर पूड़ी मिल रही। तो ऐसे बार बार ये बदलता गया, तो ये चूहा इतना कंफ्यूज हो गया कि अब बैठ गया, ऐसे करूं क्या करूं, कहां जाऊं। फिर थोड़े समय बाद धीरे धीरे जाकर फिर कहीं करंट लगा, कहीं पूड़ी मिलती, पूड़ी भी मिल रही साथ साथ, ऐसा नहीं केवल करंट ही मिल रहा है, पूड़ी भी मिलती। और इन सब ये पूरे कार्यक्रम जो इसका चल रहा था उसमें ये वैज्ञानिक ने फिर किया क्या कि खोल दिया, उसका गेट खोल दिया, उसके पिंजड़े का गेट खोल दिया, और ये चूहा लगा हुआ है यहां से वहां यहां से वहां, सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति, ये नहीं पता, गेट खोल दिया उसने। तो ये साइंटिस्ट ये पूरा उसके ऊपर थीसिस लिख रहा है कि क्या मेंटालिटी होता है। हालांकि उसमें हम शिक्षा क्या लेते हैं कि मेंटालिटी क्या है, कि इस भौतिक संसार में हम ये दो चीजों में इतने रचे पचे रहते हैं कि भगवान आकर पिंजड़े का गेट भी खोल देते हैं कि भाई बाहर निकल जाओ, लेकिन फिर भी कहां पर सुख प्राप्ति कहां दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति, उसमें इतना बिजी हो जाते हैं कि ये भी दिखाई नहीं देता कि गेट खुल गया है, बाहर हम जाकर अब स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं आध्यात्मिक संसार में। इसलिए आप किसी को मंदिर में बुलाओ कार्यक्रम के लिए तो भाग रहा है चूहे के जैसे, यहां पूड़ी मिल रही है उधर जा रहा है, वहां पे अरे यहां पे हम गेट खोल रहे हैं, नहीं 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 वहां पूड़ी मिल रही है, फिर वहां जाता है तो वहां पर करंट भी मिल जाता है, फिर झटका लगता है तो अरे वो पूड़ी और कहीं थी, तो फिर पूरा 84 लाख योनियों में भ्रमण क्या कर रहा है करते हुए जीव, यही दो चीजें, पूड़ी ढूंढ रहा है करंट से बच रहा है, झटका लग रहा है करंट लग रहा है, उसके बाद में भाग रहा है पूड़ी को ढूंढते हुए। बस उसी में अलग अलग जन्म अलग अलग योनियों में कर्म करते हुए वो फंसता रहता है। यहां पर भगवान कहते हैं कि उन दोनों को सहन करते हुए तुम युद्ध करो जिसके द्वारा तुम आत्यंतिक दुख की निवृत्ति कर पाओगे और आत्यंतिक सुख की प्राप्ति कर पाओगे। उसे मत छोड़ो, परंतु ये समझो कि वास्तविक दुख क्या है जिसका निवारण करना है इस मनुष्य देह में, और वास्तविक सुख क्या है जिसकी प्राप्ति हमें करनी है। तो इसलिए ये तीन श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इसके आगे भगवान ये समझाने वाले हैं और विस्तार से कि ये शरीर और आत्मा में क्या अंतर है जिसे तुम इतने आसक्त हो, जिस शरीर में इस शरीर और आत्मा का और कितना अंतर है, भगवान और विस्तार से उदाहरणों के द्वारा सिद्धांतों के द्वारा अर्जुन को ठोक पीट कर समझाने वाले हैं, ताकि अर्जुन जो भगवद गीता की बुनियाद है उसको समझ ले, और उसके ऊपर फिर भगवान आगे इस अध्याय में समझाएंगे कि कर्तव्य, कर्तव्य की परिभाषा क्या है, अर्थात स्वधर्म की परिभाषा क्या है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इसलिए आज का श्लोक ये हो सकता है कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से थोड़ा जटिल हो, थोड़ा कठिन हो, परंतु इस सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है हमारे दैनिक जीवन में। हम किस प्रकार से इस श्लोक को यदि अनुवादित कर जिए, आज के श्लोक को, ताम स्थितिक्षस्व, कि सहन करते हुए, केवल ऐसे नहीं सहन करते हुए कि हां बस काटना है, जीवन काटना है किसी न किसी प्रकार से, सुख और दुख को उस प्रकार से सहन करते हुए नहीं, परंतु समझते हुए कि ये दोनों सुख और दुख ये अनित्य है, परंतु मैं जो नित्य हूं यदि उससे प्रभावित हो जाऊंगा तो मैं भी उसी सुख दुख के समान अनित्य बनूंगा, वो समझना आवश्यक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय।